इनसिक्योरिटी। वंशिका ने सबको वहीं से जाने के लिए कहा और खुद दूसरी कार ना मिलने पर ऑटो लेकर प्रोफेसर की लैब की ओर रवाना हो गई। अब आगे, वहीं दूसरी ओर, अब आहान, ध्रुव, आकाश, सुमित सबके सब राजवीर के ठिकाने बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने में बिजी थे, इसीलिए राधिका और रश्मि ने उन्हें फ़ोन करके ये नहीं बताया कि रौनक की तबीयत खराब है, क्योंकि उनका काम भी ज़रूरी था। इसीलिए उन्होंने सोचा कि पहले रौनक की हालत देख लेते हैं, उसके बाद ही सबको इन्फॉर्म करेंगे। वहीं दूसरी ओर अरमान के ऑफिस में आस्था मुंह बनाकर बैठी हुई थी। उसे अभी तक पता नहीं था कि वहां हो क्या रहा है। उसने अपनी प्रॉब्लम तो सबसे डिस्कस कर ली थी, लेकिन जो कुछ भी वहां हुआ वो सब उसके लिए बिल्कुल असहनीय था। वहीं संजना का इरादा आस्था को अब भी अच्छा खासा सबक सिखाने का था। देर न करते हुए वो एक बार फिर फाइल साइन करवाने के बहाने अरमान के केबिन में आ धमकी। वहीं पास में अंश अपने टॉयज को हाथ में लेकर उनके साथ खेल रहा था। इस बार आस्था ने अरमान की तरफ एक बार भी नहीं देखा था, लेकिन अरमान की नज़रें रह रहकर बार बार बस आस्था पर ही जाकर टिक रही थीं। फिलहाल जैसे ही संजना वहां आई, उसने जल्दी से फाइल आगे बढ़ाई और हल्की सी स्माइल करते हुए बोली, सर आपको यहां सिग्नेचर करने होंगे। ये बोलकर संजना बहाने से अरमान के पास जाकर खड़ी हो गई। आस्था ने उसे तिरछी नज़रों से देखा, फिर पूरी तरह इग्नोर कर दिया। संजना वहां खड़ी होकर आस्था को देखकर अजीब तरीके से मुंह बना रही थी, जैसे वो कहना चाह रही हो, देखो मैं तुम्हारे पति के कितने करीब खड़ी हूं। तभी अचानक गर्मा गर्म कॉफी, कहते हुए एक शख्स अपने हाथों में कॉफी पकड़े वहां आधमका। वो कोई और नहीं बल्कि अबीर सिंह राठौर था। अबीर को अपने ऑफिस में देखकर अरमान की आंखें गुस्से से सुलग गईं और एकदम से उसका मुंह बन गया। वहीं संजना अबीर को देखकर थोड़ा सकपका गई थी। उसने सोचा, अब ये कौन आ गया। असल में संजना को अबीर के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी। अबीर के वहां आते ही आस्था ने अरमान के चेहरे को तिरछी नजरों से देखा और अगले ही पल आस्था ने अपनी आंखें एकदम चौड़ी करके अबीर की ओर देखकर एक मुस्कान दी और मुस्कुराते हुए उसने अबीर के हाथ से वो कॉफी ले ली। फिर अबीर एकदम से एक्साइटेड होकर आस्था की ओर देखकर बोला, वाह, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे ऐसे यहां मिल जाओगी। वैसे भी मैं तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता था और तुम हो कि यहां ऑफिस में बैठी हो, तो मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहां चला आया। फिर उसने मजाकिया अंदाज में पूछा, वैसे आज मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताने का मौका तो मिलेगा ना। ये बोलकर अबीर वहीं बैठ गया। अपने ऑफिस में अबीर की मौजूदगी महसूस करके अरमान के तन बदन में आग लग गई। अब आस्था स्माइल करते हुए अबीर के साथ कॉफी पी रही थी और उसे यहां वहां की बातें बता रही थी, जिसे देखकर अरमान और ज्यादा तिलमिला उठा। वो एकदम से खड़ा हुआ और अबीर पर बरसते हुए बोला, अबीर सिंह राठौर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह मेरे ऑफिस में आने की। ये अरमान सिंघानिया का ऑफिस है, कोई कॉफी शॉप नहीं जहां तुम आराम से बैठकर कॉफी पीते हुए गप्पे हाँक रहे हो। इस पर अबीर शांति से मुस्कुराया और अरमान की बात को हंसी में टालते हुए बोला, अरे भाई, इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है, हम तो अच्छे खासे दोस्त हैं ना, और वैसे भी मैं यहां सिर्फ अपनी बटरफ्लाई यानी आस्था के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने आया हूं। और हाँ, मैंने सुना है कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है, घर के सभी लोग इस बात को लेकर दुखी हैं, लेकिन मुझे तो बहुत खुशी है, कम से कम अब तुमने अपनी याददाश्त जाने के बाद मेरी बटरफ्लाई को अकेला तो छोड़ा। और फिर अबीर अरमान को मजाकिया अंदाज में देखकर बोलता है, वरना जब देखो इसे अपने पास में बैठा कर रखते थे, पता है कितना पोजेसिव रहते थे तुम आस्था के लिए, लेकिन अब देखो, अब तो तुम इसे अपनी आंखों के सामने देखना भी नहीं चाहते, और वैसे भी तुम्हें देखकर लगता है कि तुम अब जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, और तुम्हारी सेक्रेटरी को देखकर लग रहा है कि जैसे तुम उसके कुछ ज्यादा ही क्लोज हो। फिर वो अरमान को चढ़ाते हुए हंसकर बोला, तो तुम्हें आस्था की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी बीवी का ध्यान रख लूंगा। अबीर के उन शब्दों ने अरमान के गुस्से को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया। उसने अबीर के हाथ में पकड़े कॉफी के कप को जमीन पर पटका और अगले ही पल वो अबीर पर चिल्लाने लगा, भले ही मेरे पास मेरी कुछ सालों की यादें ना हो, भले ही मुझे ये याद ना हो कि ये लड़की मेरी बीवी है, लेकिन इसका नाम फिर भी अरमान सिंघानिया के साथ जुड़ा हुआ है। जब तक इसका नाम मेरे साथ जुड़ा है, तब तक कोई इसके बारे में सोच भी नहीं सकता, समझे तुम। भले मैं इसे अपनी बीवी मानूं या ना मानूं, लेकिन समाज की नजरों में ये मेरी बीवी है। खबरदार जो तूने अपनी जुबान से इसका नाम भी लिया तो। जैसे ही अरमान ने सबके सामने अबीर को ये चेतावनी दी, आस्था को ऐसा लगा जैसे उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई हो, लेकिन उसने अपने दिल की बात को चेहरे से जाहिर नहीं होने दी। लेकिन इस बात पर संजना का चेहरा काला पड़ गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि अरमान इस तरह सबके सामने आस्था के लिए स्टैंड लेगा, और साथ साथ उसे अबीर पर मन ही मन गुस्सा आने लगा था कि ये बेवकूफ कौन है और ये कहां से आ टपका, और इसे इस तरह की हरकत करने की क्या जरूरत थी।
वहीं आस्था अब थोड़ा सा डर हुई थी और सोच रही थी कि अबीर को क्या जरूरत थी इस तरह मिस्टर सिंघानिया के अंदर के शेर को जगाने की। तभी अबीर सोफे पर अंश के साथ बैठ गया। सिचुएशन को भांपते हुए आस्था ने अगले ही पल अरमान का हाथ पकड़कर उसे साइड ले जाते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, मुझे लगता है कि आपको अपनी सेक्रेटरी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, और मैं अपनी जिंदगी में क्या करती हूँ क्या नहीं इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, समझे आप। ये कहकर वो झुकी, फिर अंश को बहुत प्यार से अपनी गोद में लेकर और फिर बेपरवाह अंदाज में बोली, और वैसे भी अभी तो आप काम कर रहे हैं ना, और आपने मुझे यहाँ अपने बेटे को संभालने के लिए बुलाया था, तो मैं इसे आराम से संभाल सकती हूँ। चलिए मिस्टर राठौर, हम चलकर सोफे पर इत्मीनान से बैठकर बातें करते हैं। ये बोलकर आस्था अबीर के साथ अरमान की चेयर के ठीक थोड़ी दूरी पर पड़े सोफे पर बैठ गई। अरमान वहीं खड़ा रह गया और उसकी नजरें लगातार आस्था के उस हाथ पर टिकी हुई थी जिससे उसने अबीर का हाथ पकड़ा हुआ था। ये देखकर उसने अपने हाथों की मुट्ठी कस ली, उसका दिल और दिमाग पूरी तरह से फटने को तैयार था। वहीं संजना आगे बढ़कर अरमान का हाथ थामते हुए बोली, सर शांत हो जाइए, आपको इस तरह स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। लेकिन अरमान को संजना का इस तरह उसका हाथ पकड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसने तुरंत संजना का हाथ झटक दिया और अगले ही पल उसे झिड़की देते हुए बोला, अपना हाथ अपने पास रखो, मुझे तुम्हारा स्पर्श जहर लगता है। इतना बोलकर अरमान गुस्से में अपने लैपटॉप पर काम करने लगा। संजना ने गुस्से से दांत भींचते हुए मन में कहा, मानना पड़ेगा आस्था, तुम तो बहुत पक्की खिलाड़ी निकली, लेकिन अब चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारे पति को तो मैं अपना बनाकर ही रहूंगी। ये कहकर उसने जल्दी से किसी को टेक्स्ट मैसेज भेजना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर राधिका और रश्मि आनंद फानन में वापस मेंशन पहुंचती हैं। जैसे ही वे वहां आई उन्होंने देखा कि रौनक दर्द से तड़प नहीं है। रश्मि ने तुरंत रौनक की स्थिति चेक की, फिर नानी माँ की ओर एकदम से देखकर बोली, अब देर नहीं कर सकते, बच्चा डिलीवर होने वाला है। ये सुनकर नानी माँ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई, फिर वो चिंतित होकर बोली, मुझे पहले ही रौनक के चेहरे को देखकर लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, शायद उसे दर्द हो रहा था, लेकिन घर में इतना ड्रामा हुआ कि इसने अपना दर्द छिपा लिया। चलो फटाफट इसे लेकर हॉस्पिटल चलते हैं। सिचुएशन को भांपते हुए बादाजी अभिमान जी ने कार निकाल ली थी और सब लेकर वो तुरंत हॉस्पिटल की ओर रवाना हो गए।
वहीं दूसरी ओर वंशिका सीधी अपनी प्रोफेसर के घर जा पहुंची थी। जैसे ही वो अंदर आई उसने हैरानी से अपनी आंखें चौड़ी कर ली, क्योंकि प्रोफेसर साहब का पूरा घर तहस नहस पड़ा हुआ था। ये देखकर वंशिका को किसी अनहोनी की आशंका होने लगी। वो घबराकर सोचने लगी, आखिर ऐसा भी क्या हुआ है यहाँ पर जो ये सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। वंशिका के चेहरे पर काफी कन्फ्यूजन और घबराहट नजर आ रही थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत ध्रुव को मैसेज करके अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर दी और फिर धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर साहब को टूटी हुई आवाज में पुकारने लगी, बाबा कहाँ हैं आप? आप ठीक तो है ना? वंशिका की आवाज में फिक्र और घबराहट दोनों झलक रहे थे। वहीं दूसरी ओर ध्रुव, आहान, आकाश और सुमित सब एक साथ थे। वे अपने कुछ आदमियों से पूछताछ कर रहे थे, क्योंकि उन्हें राजवीर की एक लीड मिली थी। उन्हीं में से एक आदमी ने बताया कि लास्ट टाइम राजवीर को नाइजीरिया के एक हॉस्पिटल में देखा गया था। उन्हें ये जानकारी इतनी आसानी से नहीं मिली थी। टाइगर और मारिया ने इसमें पूरी तरह योगदान दिया था। हालांकि उन्हें आस्था ने हार्म हाउस में रेस्ट के लिए भेजा था, लेकिन वे दोनों अपने किंग की हेल्थ को लेकर चिंतित थे, इसलिए उन्होंने सुमित की मदद की और राजवीर के बारे में जो भी जानकारी थी वो उन्हें पहुंचा दी। कहीं ना कहीं आकाश समझ गया था किसी की मदद के बिना इतनी सटीक जानकारी मिलना इम्पॉसिबल था। जरूर इसके पीछे किसी न किसी का हाथ है। फिलहाल आकाश ने एक्शन लेते हुए अपने कुछ खास आदमियों को नाइजीरिया जाने के लिए रवाना कर दिया, ताकि वो वहां जाकर राजवीर के ठिकाने की पूरी जानकारी इकट्ठा कर सके। उधर जैसे ही ध्रुव को वंशिका का मैसेज मिला तो वो हैरान और परेशान हो गया। अब देर न करते हुए वो फटाफट वंशिका की भेजी हुई लोकेशन की ओर निकल पड़ा। वहीं दूसरी ओर राधिका ने देर न करते हुए रौनक की कंडीशन के बारे में सबको ग्रुप में मैसेज कर दिया, हम रौनक को लेकर अस्पताल आए हैं। ये मैसेज पढ़ते ही वहां मौजूद सबके चेहरों के हाव भाव पूरी तरह बदल गए थे। आहान के दिल में डर और एक्साइटमेंट दोनों एक बराबर थे। अचानक उन सबके दिलो दिमाग पर एक अजीब सा एहसास हावी होने लगा। वहीं दूसरी ओर इस वक्त आस्था अबीर के साथ अरमान के ऑफिस में मौजूद थी। जब से अबीर सिंह राठौर वहां आया था तब से अरमान का गुस्सा और जलन के मारे बुरा हाल हो चुका था। आस्था अब अबीर से नॉर्मली बातें कर रही थी। आखिरकार अबीर के जाने से पहले उन दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। अबीर ने ये बात एक्सेप्ट कर ली थी कि आस्था अरमान सिंघानिया की पत्नी है और वो उसकी कभी नहीं हो सकती है, और आस्था की खुशी में उसकी खुशी है। लेकिन फिर भी वो मौका मिलते ही आस्था से हल्का फुल्का फ्लर्ट करने से नहीं चूकता था। अब अबीर ने आस्था को देखते हुए नॉर्मली कहा,
वैसे बटरफ्लाई, तुम काफी हद तक दुबली नहीं हो गई हो। अरे मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पास अब दो दो बच्चे हैं। अबीर की बात सुनकर अगले ही पल आस्था कन्फ्यूजन और आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगी। तब अबीर बात को संभालते हुए शरारत से बोला, अरे मेरा मतलब है, एक तो ये चैंपियन अंश और दूसरा वो लैपटॉप वाला अरमान सिंघानिया, वो भी तो तुम्हारा एक बच्चा ही है। वो हंसते हुए आगे बोला, मेरा मतलब है तुम्हारा पति भी बच्चे से कम नहीं है, क्योंकि वो एक बार फिर खतरनाक डेविल किंग जो बन चुका है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता तुम इसे कैसे झेलती हो। इतना बोलकर उसने अंश को प्यार से अपनी बाहों में थाम लिया। वहीं दूसरी तरफ अरमान का गुस्सा अब हद से ज्यादा बढ़ने लगा था। उससे अब अबीर और आस्था की ये नजदीकियां बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थीं। अचानक उसने अपने टेबल पर हाथ मारा और अपनी आवाज में गुस्सा भरते हुए संजना से बोला, तुम यहां खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाकर मीटिंग की सारी तैयारी करो, और हाँ, अगर मैं इस लड़की को साथ में लेकर आया हूँ तो इसे भी कोई ना कोई काम थमा दो, ये यहाँ खाली ना रहे। आस्था ने अरमान की आवाज में छुपी हुई नाराजगी भांप ली थी। वो समझ चुकी थी उसके अंदर जलन और गुस्से का तूफान मचल रहा है। उसने अरमान के चेहरे पर जलन भरे एक्सप्रेशंस को देखा और मन ही मन मुस्कुराई। तभी अचानक अबीर के फोन पर किसी का मैसेज आया। सामने वाले का मैसेज देखकर अबीर के एक्सप्रेशन पल पल बदलते चले गए। मैसेज पढ़ने के बाद उसने आस्था की ओर एकदम से देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ एक्साइटमेंट में पूछा, वैसे बटरफ्लाई, आज शाम को तुम्हारा क्या प्लान है? मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम दोनों आज रात डिनर पर सुमित के होटल चले। डोंट वरी, हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे, और अगर तुम्हें ठीक लगे तो चैंप को भी साथ ले लेना। ये बोलकर उसने एक बार फिर अंश को प्यार से चूमा और आस्था को बाय करके वहां से फटाफट से चला गया। अब आस्था को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक अबीर के पास ऐसा कौन सा मैसेज आया था जिसे देखने बाद वो इस तरह जल्दबाजी में चला गया। आगे क्या होगा इस कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए।